नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
ये गुनाह प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य हम कुछ नई और आत्मिक बातों को सीखेंगे। आइए हम सब इससे पहले के अध्ययन में बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके जीवित वचन पर विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उस पर से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें हरेक को बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे ताकि जब हम आपके वचन में से पढ़ते और सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें से हरेक श्रोता भाई बहनों के जीवन को स्पर्श करें। विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक रीति से, पारिवारिक समस्याओं से, व्यक्तिगत समस्याओं से और कुछ ऐसे नशे की आदि की बातों से लेकर के, और हो सकता है कि अपनी नौकरी के लिए, अपने जीवन साथी की तलाश के लिए। पिताजी, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक से बातचीत करें ताकि एक एक का जीवन आपके ऊपर भरोसा करने पाए, आपकी निकटता में आने पाए, आपको महिमा देने पाए। इस समय जो यहाँ पर बैठे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि अध्याय 17 के साथ यीशु की प्रार्थना समाप्त हो गई और अब किद्रोन नाले के पार गतसमनी नामक वाटिका में वह गया। वह अपने शिष्यों के साथ अधिकतर यहाँ आया करता था। अध्याय 13 से आरंभ करके अध्याय 17 की प्रार्थना तक यीशु का सभोपदेश समाप्त होता है। संत अगस्तीन ने इन वचनों के लिए कहा, ये वचन शब्दों के अनुसार तो सरल थे परंतु उनका विचार गहन था और यह अति सत्य भी है। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पांचवें भाग में प्रवेश करते हैं जो अध्याय 18 से 20 तक है, जिसमें हम देखते हैं कि उसे बंदी बनाकर महायाजक के सामने ले जाया जाता है। यहाँ पर यूहन्ना का वृतांत अन्य तीन सुसमाचारों से भिन्न है। उन तीन सुसमाचारों के वृतांत में यीशु के मनुष्यत्व और शारीरिक कष्टों पर बल दिया गया है। उसने कहा कि वह अपनी जान बलिदान करने यरूशलेम जाएगा। उसने अपनी मृत्यु, अपने साथ दुर्व्यवहार, अन्य जातियों द्वारा उसके अपमान तथा पुनरुत्थान का उल्लेख किया था, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु के ईश्वरत्व पर बल दिया गया है, अतः यहाँ उसकी महिमा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उसके बंदी बनाए जाने में, उसकी मृत्यु में, उसके पुनरुत्थान में हम उसकी महिमा देखेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि उसने बार बार यह कहा है कि वह पिता के पास लौटेगा, वह पिता के पास जाता है, यही तो उसकी महिमा है। अब हम देखते हैं गतसमनी में यीशु को बंदी बनाया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। ध्यान दीजिए, इस पद में यीशु की गरिमा और दीनता का मिलन है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी रातें खुले आकाश के नीचे व्यतीत करता था। वह किद्रोन पार वाटिका में क्यों गया? स्पष्ट है कि वहां वह प्रायः जाया करता था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके दो पद में पढ़ते हैं, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। मेरे मित्रों, लुका अपने सुसमाचार के अध्याय 21 और उसके 37 पद में लिखता है, वह दिन में मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। लुकार के सुसमाचार 22 अध्याय उसके 39 पद में वह फिर जैतून पर जाता है। लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे चले गए। इसराइल के इतिहास में एक और अभागे मनुष्य ने किद्रोन नाला पार किया था। दाऊद ने जब वह अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा था, उस समय उसके अति घनिष्ठ मित्र एवं मार्गदर्शक अहितोपेल ने उसके साथ विश्वासघात कर अबशालोम का पक्ष ले लिया था। जहां तक हम समझ पाते हैं, यीशु ने यरूशलेम में कभी रात नहीं बिताई। इससे पूर्व वह बैतनिया में लाजर के घर पर ठहरा था और अपनी इस अंतिम रात वह गतसमनी में था। संभवतः इसलिए कि उसके बैरी उसे आसानी से पकड़ सके, क्योंकि यहूदी अगुए जन समूह से डरते थे और यही कारण था कि उसे वे हाथ नहीं लगाते थे। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यूहन्ना यीशु की पीड़ा और गतसमनी से प्रार्थना का उल्लेख नहीं करता है, वह उसकी महिमा करता है। हम देखते हैं कि यीशु ने बंदी बनाए जाने के समय विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना था। जैसा यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि जिस प्रकार भेड़ ऊन कतरने वाले के सामने चुप खड़ी रहती है, उसी प्रकार यीशु ने भी अपना मुंह नहीं खोला। यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 7 पद में इसे पाते हैं, इस समय उसका आत्मसम्मान पूर्णतः अदम्य था। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि इससे पूर्व जब उसके बैरी उसे पकड़ना चाहते थे, तब वह विलोप हो गया था, परंतु वहां वह उनकी पहुंच और पकड़ में है। इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूहन्ना 18 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां पर आया। वे उसे पकड़ने के लिए दल बनाकर और हथियार लेकर आए थे। लुका के वृतांत अर्थात वर्णन में यीशु कहता है, लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 52 पद में, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? यहां पर ध्यान दें कि वे दल बनाकर और हथियार लेकर क्यों आए थे। वे यीशु की असामान्य शक्तियों को देख चुके थे और इस कारण से वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। यीशु के गौरव को देखिए, हम यूहन्ना 18 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? मित्रों, क्या आप यह सोचते हैं कि वह दुर्बल और वशकरणीय था? यहां तक कि रोमी शक्ति द्वारा भी यदि यीशु समर्पण नहीं करता तो उसकी संपूर्ण शक्ति भी उसे पकड़ने में असमर्थ होती। हम यूहन्ना 18 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। ध्यान दीजिए कि उनका पकड़वाने वाला भी उनके साथ था। मैं नहीं चाहता कि आप इस संबोधन से चूकें, यीशु नासरी। वे सम्मान सूचक शब्द काम में नहीं ले रहे थे। वे उसे यीशु मसीह नहीं कहते थे। जो भी हो, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। वह दिन आने वाला है मित्रों कि सब प्राणी चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में क्यों ना हो, उसके नाम पर घुटने टेकेंगे। परंतु उस समय वे उसे अर्थात मसीह को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सत्य तो यह है कि वे उसे जानते नहीं थे। जब यहूदा जो 3 वर्ष यीशु के साथ साथ रहा उसे नहीं पहचाना, तो उनकी क्या बात करें जो उसके साथ हमेशा नहीं रहते थे। यहूदा यीशु को क्यों नहीं पहचान पाया? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पौलुस लिखता है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मेरे मित्रों, पौलुस ने यह भी कहा है कि सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं समझता है, क्योंकि उन्हें समझने के लिए आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। यहूदा यीशु को इसलिए पहचान नहीं पाया कि यीशु वहां महिमा का प्रभु प्रकट था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 6 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उसके यह कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ध्यान दीजिए, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की, अनुग्रह और सत्य से पूर्ण। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में इसे पढ़ चुके हैं। इस अंधकारपूर्ण पल में भी जब वह जगत के पापों को उठा ले जाने वाला मेमना है, अर्थात उसे भेजा गया था, तब भी उसका ईश्वरत्व प्रकट था। यही कारण था कि वे पीछे की ओर गिर पड़े। उसने स्पष्ट प्रकट कर दिया था कि वह सर्वशक्तिमान था और उसकी अपनी इच्छा के बिना उसे पकड़ना उनके लिए संभव नहीं था। अतः वे भय और विस्मय से पूर्ण पीछे गिरे, सामने की ओर नहीं, सामने नहीं कि उसे दंडवत करें। वे उलझन में पड़ गए थे क्योंकि वे किसी मनुष्य को पकड़ने आए थे, महिमा के प्रभु को नहीं। यहां भजन संहिता 27 उसके 1 और 2 की पूर्ति होती है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। मेरे मित्रों, यह ईश्वरीय पक्ष है। अब मानवीय पक्ष देखिए, जो भजन संहिता 35 उसके 4 पद में लिखा है, जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निराधार हों, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। तब हम आगे देखते हैं भजन संहिता 40 उसके 14 पद को सुनिए, जो मेरे प्राण की खोज में हैं वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय मित्र, वचन की पूर्ति पर ध्यान दीजिए। वे यीशु नासरी को एक साधारण मनुष्य को खोज रहे थे, परंतु क्षण भर के लिए उन्होंने यीशु की स्वर्गिक महिमा को देखी। मेरे मित्रों, आप यीशु में क्या देखते हैं? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? मनुष्य बाइबल पढ़े और अति धर्मी भी हो तथा सदाचारी हो, परंतु आवश्यक नहीं कि वह यीशु नासरी को मसीह माने, अर्थात जीवित परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 7 से 9 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। यहां पर यीशु का गौरव देखिए कि उसकी आज्ञा अब भी चल रही है। वह उन्हें निर्देश दे रहा है कि किसे बंदी बनाया जाए और किसे नहीं। चरवाहा पकड़ा जाएगा और भेड़े तितर बितर होंगी, परंतु पकड़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि यीशु ने कहा था कि उसने एक को भी नहीं खोया। उन्हें गवाह स्वरूप भी नहीं पकड़ा गया कि उसे ले जाकर उन लोगों से गवाही लिया जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 18 उसके 10 पद में, शमौन पत्रस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखूस था। मेरे मित्रों, तलवार चलाने के अपराध में शमौन पत्रस को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि हमें इसके बारे में और अधिक कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 18 उसके 11 पद में लिखा है, तब यीशु ने पत्रस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? प्रभु यीशु ने उस सेवक का कान फिर से जोड़ दिया था। परंतु उन्होंने तलवार चलाने के अपराध में पत्रस को बंदी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यीशु ने उन्हें आदेश दिया था, इन्हें जाने दो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने पत्रस से क्यों कहा अपनी तलवार म्यान में रख? पहले तो वह शिष्यों से कह रहा था कि वे तलवारें ले लें। क्यों? यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि वे तलवार लेकर युद्ध के लिए निकले या उसकी रक्षा करें। यीशु ने तो जानबूझकर अपने को पकड़वाया था, क्योंकि वह कटोरा पिता ने उसके लिए रखा था कि वह उसे पिए। धर्मशास्त्र में कटोरा अनेक संदर्भों में काम में लिया गया है। भजन संहिता 116 उसके 13 पद में लिखा है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यर्मिया 16 उसके 7 पद में लिखा है, न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। भजन संहिता 23 उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मत्तयि सुसमाचार 26 अध्याय उसके 39 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मेरे प्रियो, यह दंड का कटोरा था जो उसने हमारे स्थान पर पिया। अब यदि कोई प्रभु यीशु को ना माने तो उसे दंड का वह कटोरा पीना पड़ेगा, क्योंकि वह कटोरा वास्तव में हम पापियों का था। वह तो बिल्कुल निष्पाप था, उसमें कोई भी पाप नहीं था, वह तो निष्कपट था। मेरे मित्र, न्याय का भी कटोरा है जो आने वाले भविष्य में उंडेला जाएगा। प्रकाशित वाक्य में यर्मिया 25 उसके 15 और भजन संहिता 11 उसके 6 की भविष्यवाणियों के अनुसार दुष्टों पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, जिनमें आग, गंधक और लहू होगा। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु के शब्दों के पीछे क्या भाव है। वह बाध्य होकर आदेशानुसार कटोरा नहीं पी रहा है, परंतु उसे पीने का अपना स्वैच्छिक निर्णय स्पष्ट कर रहा है। इससे बढ़कर क्या कोई स्वैच्छिक कार्य हुआ है? इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो मेरे मित्रों, यह है यीशु का स्वैच्छिक कार्य और उसकी महिमा की उसने हमारे दंड का प्याला पिया कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो, हमें उद्धार की प्राप्ति हो, और वह भी निर्मोल, जिसका कीमत ना मुझे और ना आपको चुकाना है। लेकिन आपका निर्णय क्या है? क्या आप अपना कटोरा स्वयं पीना चाहते हैं? यदि नहीं तो प्रभु यीशु को अपना प्रतिस्थापन मानकर उसे स्वीकार करें। यह जाने कि उसने आपके पाप के कटोरे को पी लिया है और वह आपके बदले में पकड़वाया गया है, ताकि वह आपके बदले में और मेरे बदले में, इस संसार के बदले में मरे और सारे संसार को इस पाप से छुटकारा दे, मुझे और आपको उद्धार दे। वह कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रिय, आज इस वचन के प्रकाशन में हम सब अपने जीवन को जांचें और देखें कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना अधिक प्रेम करता है। यदि वह मुझसे और आपसे प्रेम नहीं करता तो शायद वह अपनी जान क्रूस पर नहीं देता, लेकिन वह इसीलिए आया कि वह मुझे और आपको उस पाप की गंदगी से, उस दलदल से बाहर निकाले। क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हुए देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दलदल में गिर जाता है तो वह अपने आप से जब प्रयत्न करता है कि उसे बाहर निकले, तो वह और अधिक धसता चला जाता है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त करता है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम उद्धार प्राप्त करेंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। हम कैसे अच्छे काम कर सकते हैं? हाँ, हम अच्छे काम तब कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वह हमारे गंदगियों को हमारे हृदय से साफ कर देता है। तब हम अच्छे कर्मों को करते हैं और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्या आज आप भी अपने कर्मों पर विश्वास कर रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करेंगे और उद्धार पाएंगे? लेकिन यहाँ पर एक प्रभु है जो आपको आमंत्रित करता है कि आप बिना किसी कर्म के ही उद्धार पा सकते हैं, और वह है कि आप सिर्फ उस पर विश्वास करें। मेरे प्रिय मित्र, आइए आज हम इस समय निर्णय लें। हमारे सामर्थ्य प्रभु, इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसके माध्यम से आपने हमसे बातचीत किया है। हमने जान लिया है कि आप सचमुच में मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे जीवन से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं कि मैं पापी, दुर्बल और कमजोर व्यक्ति हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे हरेक श्रोता भाई बहनों से प्रेम करते हैं जो इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रत्येक के जीवन को आप जानते हैं प्रभु, जो कोई भी आपकी निकटता में आना चाहता है आप उन्हें स्पर्श करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, और होने दे प्रभु आज के बाद आप ही उनके जीवन के स्वामी बन जाएं, आप उनके संचालक बन जाएं। ऐसा होने दे कि उनके जीवन से आपको महिमा मिले और उस उद्धार के आनंद को जिसके लिए आप इस जगत में आए वे बहुतायत से प्राप्त कर सकें, उस आनंद को बहुतायत से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हम सबको आशीष देने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। इतनी दे शक्ति हमें ना डगमगाए, तेरे वचन पे सदा चलते रहे। इतनी दे शक्ति हमें ना डगमगाए, तेरे वचन पे सदा चलते रहे। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया।